लेकिन खुदा की मर्जी, इसका मतलब है वो अपनी मर्जी हवाले कर रहा है खुदाए बरतर को। और अगर अरबी में तर्जुमा करें इसका मतलब है इस्लाम, और जो कोई अपनी मर्जी खुदाए बरतर के हवाले करता है उसे मुस्लिम कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम यकीनन तौरेत या नबियों को मंसूख करने नहीं आए, हकीकत में वो उनकी तस्दीक करने आए। और ईसा अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा, इसका जिक्र है मैथ्यू की इंजील में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20, उन्होंने कहा कि ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों को मंसूख करने आया हूं। ये सारे हवाले बाइबल के किंग जेम्स वर्जन से लिए गए हैं। ईसा इस्लाम कहते हैं कि मत समझो कि मैं तौरेत और नबियों को मंसूख करने आया हूं, मैं मंसूख करने नहीं आया हूं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई छोटे से छोटे हुक्म को भी तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। जब तक तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो तुम्हें मानना होगा हर एक कानून को, पुराने अहदनामे के, मैं इसके कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, तुम अल्लाह का कोई अक्स नहीं बना सकते। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी दावा नहीं किया कि वो खुदा है, हकीकत में उन्होंने फरमाया कि उन्हें खुदा ने भेजा था। इसका जिक्र है जॉन की इंजील में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये लफ्ज जो तुम सुनते हो मेरे नहीं है बल्कि मेरे बाप के हैं जिसने मुझे भेजा। इसका जिक्र है जॉन की इंजील में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, ये जिंदगी अबदी है ताकि तुम जान सको सिर्फ एक अल्लाह है और ईसा मसीह जिसे उसने भेजा है। इसका जिक्र है आमाल की किताब में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 के, है इसराइलियों सुनो, ये बातें सुनो कि ईसु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ, खुदा ने उसके मार्फत तुम में दिखाए, चुनांचे तुम आप ही जानते हो। और जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है, उन्होंने दोहराया जो पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। इस बात का जिक्र है मार्क इंजील में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, शमा इज़राइलो अदना अलहैनु व अदना खद, हे इज़राइल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। इसलिए अगर आप बाइबल पढ़ें तो आप समझ सकते हैं खुदा का तसव्वुर ईसाइयत में। अब हम तज्जिया करते हैं इस्लाम में खुदा के तसव्वुर का। बेहतरीन जवाब जो कोई शख्स आपको दे सकता है इस्लाम में खुदा के तसव्वुर के बारे में वो है सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 जो कहती है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना कोई उसका हमसर है। यह है चार लाइनों की तारीफ खुदाए बरतर की, अल्लाह सुबहानहू ताला की। कोई शख्स कहता है कि वो खुदाए बरतर है, अगर वो शख्स इन चार लाइनों की तारीफ पर पूरा उतरता है तो हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है उस शख्स को खुदाए बरतर मानने में। पहली कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। दूसरी अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। तीसरी लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से। चौथी है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना कोई उसका हमसर है। ये सूरह इखलास सूरह नंबर 112 ये कसौटी है थियोलॉजी की। थियो का मतलब खुदा, लॉजी का मतलब मुताला। सूरह इखलास सूरह नंबर 112 कुरान हकीम से कसौटी है थियोलॉजी की। कोई भी खुदाए बरतर होने का दावा कर रहा है, अगर वो उम्मीदवार इन चार लाइनों पर पूरा उतरता है हम उसे मान लेंगे खुदाए बरतर। और आलमी भाईचारे को आम करने के लिए यह लाजिम है कि आप माने और इबादत करें एक खुदाए बरतर की। इसलिए जो कोई खुदा होने का दावा कर रहा है, अगर वो इन चार लाइनों की तारीफ पर पूरा उतरता है तो हमें कोई एतराज नहीं है उस उम्मीदवार को खुदा मान लेने में। आप जानते हैं बहुत से झूठे लोग हैं जो खुदा होने का दावा करते हैं। आइए हम तजिया करें कि वो इम्तिहान पास करते हैं या नहीं। और ऐसे लोगों में से एक हैं भगवान रजनीश। आप जानते हैं कि कुछ लोग हैं जिनका दावा है कि वो खुदा था। मेरी एक तकरीर के दरमियान सवाल जवाब के वक्त में वहां मौजूद था हमारा एक हिंदू दोस्त, जिसने कहा कि हिंदू नहीं मानते भगवान रजनीश को खुदा। मैंने उससे कहा मैं इत्तेफाक करता हूं और मैंने हिंदू सहीफे पढ़े हैं, कहीं पर नहीं कहते हिंदू सहीफे कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने क्या कहा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हिंदुइज्म भगवान रजनीश को खुदा तस्लीम नहीं करता। आइए हम तजिया करें ऐसे लोगों के दावे का जो कहते हैं कि भगवान रजनीश खुदाए बरतर है। पहला इम्तहान है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक ही है। क्या भगवान रजनीश एक ही है? हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे इंसान हैं जो खुदा होने का दावा करते हैं, खास तौर से इस मुल्क में बहुत से लोग खुदा होने का दावा करते हैं। क्या वो एक ही है? लेकिन उसके मानने वाले वो कहते हैं नहीं, वो एक ही है। हम चलते हैं अगले इम्तहान पर, अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। क्या भगवान रजनीश बेनियाज है? हम जानते हैं उनकी सवाने हयात से उनको बीमारी थी अस्थमा की, दायमी दर्द कमर की, डायबिटीज यानी शकर की। और वो कहते हैं कि अमेरिकी सरकार ने जब उन्हें गिरफ्तार किया उन्होंने उन्हें दिया स्लो पॉइजन। तसव्वुर कीजिए, खुदा को स्लो पॉइजन दिया गया। तीसरा इम्तहान है लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से। और हम जानते हैं उनकी सवाने हयात से कि रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, उनके वालदैन थे मां बाप जो बाद में खुद उनके चेले बन गए। और 1981 के साल में रजनीश अमेरिका जाते हैं और हजारों अमरीकियों को बेवकूफ बनाते हैं और ओरेगन रियासत में वो अपना गांव बसाते हैं रजनीशपुरम के नाम से। बाद में अमरीकी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में रखा और 1985 में उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया गया। वो इंडिया वापस आते हैं 1985 में और पूना शहर में वो शुरू करते हैं खुद का इदारा द ओशो कम्यून। और अगर आप वहां जाएं, ये लिखा हुआ है वहां पत्थर पर कि भगवान रजनीश ओशो रजनीश कभी पैदा नहीं हुए ना कभी मरे, लेकिन जमीन का दौरा किया उन्होंने 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक। वो ये लिखना भूल गए कि उनको वीजा नहीं दिया गया था दुनिया के अलग अलग 21 मुल्कों में। तसव्वुर कीजिए कि खुदाए बरतर जमीन का दौरा कर रहा है और उसे वीजे चाहिए। और आखिरी इम्तहान वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उस जैसा नहीं है। ये इतना सख्त है कि कोई नहीं पास कर सकता सिवाय अल्लाह सुबहान व तआला के, खुदाए बरतर ही पास कर सकता है। जिस लम्हे आप मवासना कर सकते हैं खुदाए बरतर का दुनिया में किसी से, दुनिया में किसी चीज से, वो खुदा नहीं है। मसलन अगर फर्ज कर लें कोई कहे खुदाए बरतर 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से। आप जानते हैं आर्नोल्ड को, एक शख्स है जिसे खिताब दिया गया था मिस्टर यूनिवर्स का, आलम का सबसे ताकतवर आदमी। अगर कोई कहता है खुदाए बरतर को 1000 गुना ज्यादा ताकतवर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से, जिस पल आप खुदाए बरतर का मवासना कर सकते हैं दुनिया की किसी भी चीज से, चाहे वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो या किंग कॉन्ग या दारा सिंह, चाहे 1000 गुना हो या करोड़ों गुना, जिस पल आप खुदाए बरतर का दुनिया की किसी शय से मवासना कर सकते हैं तो वो खुदाए बरतर नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उस जैसा नहीं है। ये चार लाइनों की तारीफ है खुदाए बरतर की जो कुरान हकीम में दी गई है, जो दीन की कसौटी है। और कुरान हकीम फरमाता है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى, कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। आप पुकार सकते हैं अल्लाह सुबहान तआला को किसी नाम से, लेकिन यह खूबसूरत नाम होना चाहिए, यह दिमाग में कोई तस्वीर ना बनाता हो। और नहीं दी गई है 99 से कम सिफात कुरान हकीम में अल्लाह सुबहान तआला के लिए, अर रहमान अर रहीम, इंतहाई रहम करने वाला, सबसे ज्यादा रहीम, 99 से कम नहीं है। ہم مسلمان خدا برتر کو پکارتے ہیں عربی نام اللہ سے، اور وجہ یہ کہ ہم پسند کرتے ہیں خدا برتر کو عربی نام اللہ بجائے انگلش لفظ گاڈ کے، کیونکہ انگلش لفظ گاڈ کے ساتھ آپ شرارت بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ گاڈ کے ساتھ ایس جوڑ دیں تو یہ ہو جاتا ہے گاڈز، گاڈ کی جمع، اور اللہ کی جمع نہیں ہوتی۔ قل هو الله احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ جوڑ دیں ڈی ایس ایس گاڈ میں یہ ہو جاتا ہے گاڈس، جس کا مطلب ہے ایک مونس خدا، کوئی جنس نہیں اللہ سبحانہ تعالی کا، وہ نہ تو مرد ہے اور نہ عورت، اللہ سبحانہ تعالی کا کوئی جنس نہیں ہے، اللہ ایک بے مثال لفظ ہے۔ اگر آپ فادر جوڑ دیں گاڈ کے ساتھ تو یہ ہو جاتا ہے گاڈ فادر، وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا سرپرست ہے، ایسا کچھ بھی نہیں جیسے اللہ فادر یا اللہ ابا اسلام میں۔ اگر آپ مدر جوڑ دیں گاڈ میں تو ہو جاتا ہے گاڈ مدر، ایسا کچھ بھی نہیں جیسے اللہ مدر یا اللہ امی اسلام میں، اللہ ایک بے مثال لفظ ہے۔ اگر آپ تین لفظ لگا دیں گاڈ سے پہلے یہ ہو جاتا ہے تین گاڈ، مطلب نقلی خدا، تین اللہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں۔ یہی سبب ہے ہم مسلم بہتر سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو عربی نام اللہ سے پکارنا بجائے انگلش لفظ گاڈ کے۔ لیکن اگر کچھ لوگ، کچھ مسلم لفظ گاڈ کا استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے تاکہ وہ جو نہیں جانتے اللہ کے تصور کے بارے میں وہ جان سکیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مناسب لفظ ہے اللہ، اسے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے انگلش لفظ گاڈ کے مقابلے۔ اسلام میں عالمی بھائی چارہ صرف اوپر سے ہی نہیں پھیلتا ہے، یہ صرف دنیا اور کائنات کے تمام علاقوں اور لوگوں کو ہی نہیں سمیٹتا بلکہ اوپر سے نیچے تک جاتا ہے۔ عالمی بھائی چارہ اسلام میں، ایمان کا عالمی بھائی چارہ سمیٹتا ہے اوپر سے نیچے تک نسلوں کو بھی جو تم سے پہلے آئیں اور ماضی میں چلی گئیں۔ عالمی بھائی چارہ اسلام میں سمیٹتا ہے موجود لوگوں کو اور ماضی کے لوگوں کو، چاہے آپ ایک نسل ہوں یا ایک قوم۔ یہ عالمی بھائی چارہ، جو بھائی چارہ ایمان کا، یہ پھیلتا ہے اوپری طور پر، اسی طرح اوپر سے نیچے، اور اس ایمان کی بنیاد تمام مذہبوں میں اگر آپ تجزیہ کریں تو ایک پیدا کرنے والے کو ماننے میں ہے، ایک خدا برتر، اور اسی کے سبب سے ہے کہ عالمی بھائی چارہ عام ہو سکتا ہے تمام کائنات میں۔ اور ایمان کا یہ بھائی چارہ بہت بڑا ہے خونی رشتوں کے بھائی چارے سے۔ قرآن فرماتا ہے، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، والدین کی عزت کرنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورت نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں حکم دیا کسی کی عبادت مت کرو لیکن اس کی، اور والدین سے رحم کا برتاؤ کرو، اور اگر ان میں سے کوئی یا وہ دونوں بزرگی کی عمر کو پہنچے ایک لفظ بھی حقارت کا مت کہو، انہیں اف تک مت کہو تم، بلکہ ان سے نیچے رکھو اپنی عاجزی کو، اور انہیں عزت سے پکارو، اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کی پرورش کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اس کا مطلب آپ کو اپنے والدین کو محبت اور عزت دینی ہے، اور انہیں دینے ہیں تمام مرتبے اور عزت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15، یہ کہنے کے بعد کہ اپنے والدین کی عزت کرو، قرآن فرماتا ہے لیکن اگر وہ دونوں کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے، ایسی چیز جس کا تجھے علم نہیں، اس کا مطلب وہ تجھ پر زور ڈالتے ہیں خدا برتر کا شریک ٹھہرانے پر، تو تو ان کا کہنا نہ مان، لیکن اس دنیا میں ان کا ساتھ دے انصاف اور رحم کے ساتھ۔ اس کا مطلب آپ کو اپنے والدین کا کہنا ماننا ہے جب تک وہ خدا برتر کے خلاف نہیں جاتے، خلاف احکام کے اللہ سبحانہ وتعالی کے، ہمیں انہیں ماننا ہے۔ اگر وہ خلاف جاتے ہیں احکام کے تو اللہ سبحانہ وتعالی برتر ہے، زیادہ بڑا۔ ایمان کا بھائی چارہ عالمی ہے، یہ کہیں زیادہ بڑا ہے خونی رشتوں کے بھائی چارے سے۔ اور قرآن فرماتا ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے لڑکے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم تمہارے شریک زندگی شوہر اور بیویاں، واشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے، اللہ پوچھتا ہے تم کسے ترجیح دیتے ہو، کیا تمہارے باپ، کیا تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے شریک زندگی شوہر اور بیویاں، یا تمہارے رشتے دار، ये तमाम चीजें मिसाल के तौर पर तुम्हारे बाप या तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे शरीक की जिंदगी या तुम्हारे रिश्तेदार। और अल्लाह आगे फरमाता है, वमवालु निक्तरफ तुमूहा व तिजारतुन तक्षौन कसादहा व मसाकिनु तरजौनहा। ये दौलत जो तुमने जमा की, कारोबार जिसमें तुम मामला करते हो, घर जिनमें तुम रहते हो, अल्लाह फरमाता तुम किसे तरजीह देते हो, तुम किसे तरजीह देते हो। और अल्लाह आगे फरमाता है कि अहब्बा इलैकुम मिन अल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। अगर तुम्हें मोहब्बत है इन तमाम आठ चीजों को अल्लाह से ज्यादा, उसके रसूल और जिहाद करने से, यानी अल्लाह की राह में मुकाबला। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारे वालदैन तुम्हें कहते हैं खिलाफ जाने के लिए अल्लाह के, वो कह सकते हैं चोरी के लिए, धोखा देने के लिए, रिश्वत के लिए, लोगों को मारने के लिए बेवजह। अगर तुम्हारे वालदैन तुम्हें राह दिखाते हैं अहकाम के खिलाफ अल्लाह सुब्हान तआला के, चाहे वो तुम्हारे बेटे हो, चाहे वो तुम्हारे भाई हो, तुम्हारे शरीक की जिंदगी हो, या तुम्हारे रिश्तेदार, या तुम खुद खिलाफ जाते हो अल्लाह सुब्हान तआला के, दौलत के लिए जो तुमने जमा की हो, कारोबार जिनमें मामलात करते हो, घर जिनमें तुम्हें रहना पसंद हो, अल्लाह फरमाता है अगर तुम चाहते हो इन तमाम आठ चीजों को अल्लाह से ज्यादा, उसके रसूल और उसकी राह में जद्दोजहद करने से ज्यादा, अल्लाह फरमाता है फतरबसु, रुको, हत्ता याती अल्लाह बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल क़ौमुल फासिकीन। रुको, जब तक अल्लाह भेजता है अपना फैसला तुम्हारी तरफ, जब तक अल्लाह भेजता है तबाही तुम्हारी तरफ। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमुल फासिकीन, अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं करता। जब अकीदे की भाईचारे की बात आती है, ये बहुत बड़ा है रिश्तों के भाईचारे से। और आगे कुरान फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 के, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालों, अदल व इंसाफ पर मजबूती से जम जाने वाले और खुशनुदी मौला के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ, गो वो खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदार, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अल्लाह दोनों की हिफाजत करता है। जिसका मतलब अगर आपको इंसाफ की हिमायत करनी है, शहादत देनी है, गवाही देनी है अल्लाह सुबहान व तआला के लिए, अल्लाह फरमाता है इंसाफ की हिमायत करो। यहां तक कि अगर तुम्हें बोलना है अपने खिलाफ, अपने वालदैन के खिलाफ, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ, चाहे लोग अमीर हो या गरीब, कि अल्लाह सबका निगहबान है। इसका मतलब जब बात इंसाफ की हो, सच की हो, इंसाफ कहीं बड़ा है खूनी रिश्तों से। अकीदे का भाईचारा आगे बढ़ जाता है दूसरे तमाम भाईचारों से, और अकीदे का भाईचारा, आलमी भाईचारा कायम होता है एक पैदा करने वाले के बुनियादी तसव्वुर पर यकीन रखने से, यानी एक खुदाए बरतर, एक अल्लाह सुब्हान व तआला। तमाम मजहब यही सबक देते हैं हमें। और कुरान फरमाता है जैसे मैंने पहले कहा सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 के, تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم, ऐसी बात की तरफ आओ जो हम में तुम्हें यकसा है। पहली बात कौन सी है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। एक खुदाए बरतर में सिर्फ यकीन रखना काफी नहीं है, तुम्हें इबादत भी करनी चाहिए सिर्फ एक खुदाए बरतर की। और अगर तुम मानते हो और इबादत करते हो सिर्फ एक खुदाए बरतर की, जो एक है, तो आलमी भाईचारा आम होगा। बगैर एक खुदाए बरतर के तसव्वुर के भाईचारा और इंसानियत आम नहीं हो सकती तमाम दुनिया में। और कुरान हकीम फरमाता है सूरह अनआम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 के, और बुरा मत कहो उनको जिनकी ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इबादत करते हैं, क्योंकि फिर वो बराहे जहल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे। मैं बात खत्म करना चाहूंगा एक हवाला देते हुए कुरान हकीम का सूरह निसा से सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 जो कहती है, या अय्युहन नास तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, के हे लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अब हम शुरू करेंगे बहुत ज्यादा दिलचस्प दौर, सवाल जवाब का दौर। एडवोकेट प्रभाकर राव हेगड़े, एडवोकेट हिंगोरानी, डीसीपी सक्सेना, यहां मौजूद काबिल एहतराम मेहमानान, हमारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों, हम सवाल जवाब के दौर के बाद दरख्वास्त करेंगे हमारे मोहतरम मेहमानान से मौजू पर इजहार ख्याल की और उनकी राय की। एडवोकेट हेगड़े, एडवोकेट हिंगोरानी और डीसीपी सक्सेना से हमारी मौत बाना दरख्वास्त है सवाल जवाब के दौर के बाद वो अपनी राय दें, इस तरह हमें इस दौर का बेहतर तासुर मिलेगा। आज यहां मौजूद तमाम लोगों के फायदे के लिए हमारे पास जो मुख्तसर वक्त है उसमें हम चाहेंगे कि आप सवाल या जवाब के दौर में इन उसूलों की पाबंदी करें। पूछा गया सवाल सिर्फ मौजू आलमी भाईचारे पर होना चाहिए या इस्लाम और तकाबुली मजाहिब पर बयान शुदा। मेहरबानी करके अपना सवाल मुख्तसर और मौजू पर बयान करें। यह सवाल जवाब का वक्त है, तकरीर का नहीं। आपको दिए गए माइक से एक वक्त में मुकर्रर से सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा सकता है। दूसरे सवाल के लिए आपको माइक पर दोबारा लाइन में आना होगा दूसरी बार के लिए। सवालों के लिए ऑडिटोरियम में 3 माइक मुहैया किए गए हैं, 2 स्टेज के ठीक आगे भाइयों के लिए, 1 मेरी दाहिनी तरफ और 1 बाईं तरफ, और 1 ऊपर बैल्कनी में हमारी बहनों के लिए। स्लिप पेपर पर लिखे हुए सवालों को माइक पर पूछे गए सवालों के जवाब देने के बाद ही अहमियत दी जाएगी। रजाकारों के पास कागज की स्लिप्स हैं, अगर आपके पास नहीं है आप उनसे मांग सकते हैं और स्लिप्स भेज सकते हैं ठीक स्टेज पर रजाकारों के जरिए। मेहरबानी करके अपना नाम और पेशा बताएं अपने सवाल पूछने से पहले ताकि ज्यादा सही जवाब दिए जा सकें। गैर मुस्लिम मेहमानों को सबसे पहले अहमियत दी जाएगी अपने सवाल करने के लिए। मैं रजाकारों से माइक पर दरख्वास्त करूंगा मेहरबानी करके इस मामले को संभालें। हम इजाजत देंगे 1 माइक पर 1 सवाल की क्लॉकवाइज निजाम के तहत। 1 माइक यहां, वो माइक यहां स्टेज के नीचे है, अगला उस तरफ, 1 बहनों की तरफ और इसी तरह। अब शुरू करते हैं। हां भाई।
शुक्रिया डॉक्टर नायक, इस्लाम में खुदा के तसव्वुर की रोशन वजाहत के लिए। मेरा आसान सवाल यह है, आपने बात की नस्ली भाईचारे के बारे में, जबान के भाईचारे, खूनी भाईचारे वगैरह के बारे में, और ये रुकावटें हैं आलमी भाईचारे के तसव्वुर में, लेकिन आपने कोई बात नहीं की तसव्वुर के बारे में काफिर के। मेरे ख्याल में जो सबसे अहम रुकावट है आलमी भाईचारे के लिए दुनिया में।
क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं ताकि बेहतर जवाब दे सकूं? हां भाई।
प्रोफेसर निगर भिवंडी कॉलेज से।
प्रोफेसर ने एक सवाल किया कि मैंने बात की बहुत से तसव्वुरात के बारे में आलमी भाईचारे को लेके, और बताया कि भाईचारे का तसव्वुर जिसकी बुनियाद खूनी रिश्ता है, नस्ल है, जात है और अकीदा है वगैरह, वो रुकावटें हैं। मैं काफिर के तसव्वुर पर नहीं बोला। ये काफिर एक अरबी लफ्ज है जो बना है लफ्ज कुफ्र से, जिसका मतलब है छुपाना, 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 इसका मतलब इनकार करना भी है। इस पसे मंजर में, इस्लामी पसे मंजर में, इसका मतलब है कि कोई शख्स जो छुपाता है या इनकार करता है इस्लामी सच्चाई से, यानी जो कोई इस्लामी सच्चाई से इनकार करता है वो काफिर कहलाता है। यानी जो कोई भी इनकार करता है इस्लामी सच्चाई से कि खुदा एक है और अल्लाह सुभान व तआला और जो कुछ मैंने कहा उससे, वही काफिर है। कोई भी भाईचारा इसके अलावा जो अकीदे का आलमी भाईचारा है और इस्लामी भाईचारा, अगर वो शामिल हो जाता किसी और भाईचारे में जिसकी बुनियाद कुछ भी हो, भाईचारे की सैकड़ों किस्में हो सकती हैं, भाईचारा खास इलाके की बुनियाद पर, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, ये सब दूसरे भाईचारे कहीं नहीं आते दायरे में अकीदे के, भाईचारे के, यानी एक खुदा के तसव्वुर को मानना। ये रुकावटें पैदा करती है आलमी भाईचारे में। जैसा कि आपने कहा कि काफिर यानी काफिरों का भाईचारा, क्या ये रुकावटें डालते हैं? हाँ डालते हैं। क्या मतलब है काफिर का? जो कोई इस्लाम की सच्चाई को झुठलाता है। कुछ गैर मुस्लिम मुझसे सवाल पूछते हैं, और एक कैसेट में सवाल जवाब के बीच पूछा कि मुसलमान क्यों हमें गाली देते हैं काफिर बोलकर, लोग कहते हैं उनके अना को चोट पहुंचती है। मैंने कहा देखो काफिर एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है एक शख्स जो झुठलाता है इस्लाम की सच्चाई को। ये एक अरबी लफ्ज है उस इंसान के लिए जो झुठलाता है इस्लाम की सच्चाई को। अगर मुझे इंग्लिश में तर्जुमा करना हो तो ये हो जाता नॉन मुस्लिम। इसलिए वो शख्स नॉन मुस्लिम
जो झुटलाता इस्लाम की सच्चाई को, उसे काफिर कहा जाता है। ये सिर्फ एक तर्जुमा है इंग्लिश लफ्ज नॉन मुस्लिम का। इसलिए अगर आप कहते हैं कि नॉन मुस्लिम को एक काफिर मत कहो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? इसलिए अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे काफिर क्यों कहते हो, मुझे काफिर मत कहो, तो मैं कहूंगा कि इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें काफिर कहना बंद कर दूंगा। ये सिर्फ एक अरबी लफ्ज है नॉन मुस्लिम के लिए। उम्मीद है कि यह सवाल का जवाब हुआ।
डॉक्टर नायक, मैं एडवोकेट माधव फड़के हूं। आपने अपनी तकरीर में कहा कि खुदा जिंदा है और उसका कोई अक्स और सूरत नहीं, जैसा हिंदुज्म में कहा गया है, तब क्यों तुम मुसलमान हज पर जाते हो, पवित्र पत्थर की इबादत करते हो, जैसा कि हिंदू भी पूछते हैं?
ये बहुत अच्छा सवाल है जो भाई ने उठाया है कि अगर इस्लाम में खुदाए बरतर का कोई अक्स नहीं है, अल्लाह सुब्हान व तआला की कोई शक्ल नहीं है, तब क्यों मुसलमान पाक पत्थर की इबादत करते हैं जो काबा से मुतालिक है हज के सफर में? भाई ये गलत फहमी है। किसी मुस्लिम ने कभी काबे को नहीं पूजा, ये गलत फहमी है गैर मुस्लिमों को कि हम मुसलमान काबे को पूजते हैं। कोई मुसलमान काबे को नहीं पूजता, हम सिर्फ इबादत करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला की, जिसे हम इस दुनिया में नहीं देख सकते। हम क्या करते हैं, यानी काबा जो किबला है, किबले के माने अरबी में सिमत, काबा सिमत है, क्योंकि हम मुसलमान यकीन रखते हैं एकता में, हमेशा एकता में। मिसाल के तौर पर अगर हम इबादत करना चाहते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला की, अगर हमें नमाज अदा करनी है, कुछ कह सकते हैं हम उत्तर की सिमत रुख करेंगे, कुछ कह सकते हैं हम दक्षिण को, कुछ कह सकते हैं पूरब को, कुछ कह सकते हैं पश्चिम, हम किधर रुख करें? हम एकता में यकीन रखते हैं, इसलिए एकता के वास्ते दुनिया के तमाम मुसलमानों को कहा गया रुख करने के लिए किबले की तरफ, जो काबा है, यह हमारी सिमत है, हम इसे पूछते नहीं। और पहले आदमी जिन्होंने दुनिया का नक्शा बनाया मुसलमान थे, और जब मुसलमानों ने दुनिया का नक्शा बनाया, उन्होंने साउथ पोल को ऊपर ठहराया और नॉर्थ पोल को नीचे, और काबा बीच में रहा। पश्चिमी लोग आए और उन्होंने नक्शे को उल्टा कर दिया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह काबा अब भी बीच में है, मक्का बीच में है, और जब तक मक्का बीच में है, कोई भी मुसलमान दुनिया के किसी भी हिस्से में है, अगर वो रहता है काबे के नॉर्थ में तो वो साउथ की तरफ रुख करता है, अगर वो रहता है काबे के साउथ में तो वो नॉर्थ की तरफ रुख करता है। सारी दुनिया के तमाम मुसलमान एक ही सिमत रुख करते हैं, काबा किबला है, ये सिमत है, किसी मुस्लिम ने इसे कभी पूजा नहीं। और जब हम हज पर जाते हैं जियारत पर, तब हम तवाफ करते हैं काबे के इर्द गिर्द, हम घूमते हैं काबा के इर्द गिर्द, क्योंकि हर कोई जानता है कि सारे दायरों का मरकज सिर्फ एक है, इसलिए हम तवाफ करते हैं काबे का गवाही देने के लिए कि खुदा सिर्फ एक है, ना कि इसलिए कि हम उसे पूछते हैं। और इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, उन्होंने फरमाया, इसका जिक्र है सही मुस्लिम में किताबुल हज जिल्द नंबर 2, उन्होंने फरमाया हजरत उमर ने कि मैं चूम रहा हूं काले पत्थर को जो काबा है संगे अस्वद, सिर्फ इसलिए कि मेरे नबी ने इसे बोसा दिया, वरना यह काला पत्थर मुझे ना नुकसान पहुंचा सकता है और ना फायदा। इस्लाम के दूसरे खलीफा, खलीफा इस्लाम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हमेशा के लिए साफ कर दिया कि कोई मुसलमान कभी काले पत्थर की इबादत नहीं करता, यह ना तो नुकसान पहुंचा सकता है ना ही फायदा पहुंचा सकता है। और बेहतरीन मिसाल यह है कि नबी के जमाने में सहाबा, नबी के साथी लोग काबा पर खड़े भी हुए और उन्होंने अजान दी। अजान बुलावा है नमाज के लिए, लोग काबा पर खड़े हुए और अजान दी। मैं आपसे पूछता हूं, कोई बुत पूजने वाला क्या कभी उस बुत पर खड़ा होगा जिसे वो पूछता है? तो ये काफी सबूत है कि कोई मुसलमान कभी काबे की इबादत नहीं, काबा किबला है, हम इबादत करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला की, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब हुआ।
हाँ भाई, मैं डॉक्टर व्यास हूं, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर। हम यहां आए हैं नजरिया जानने के लिए आलमी भाईचारे पर, हम यहां नहीं आए हैं इस्लाम का नजरिया जानने के लिए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हमें बताएं इस दुनिया में भाईचारे के बारे में। अब यह जो है आलमी भाईचारा है, मैं जानना चाहूंगा क्या भाई हैं कायनात के दूसरे हिस्सों में? हिंदुस्तान में हमारे भाई हैं तो हम बात करते हैं हिंदुस्तानी भाईचारे की, और किस तरह भाईचारा इस मुल्क में असरअंदाज हुआ इस मुल्क की तारीख पर पिछले 100 सालों में।
भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ایک بہت متعلقہ سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں عالمی بھائی چارے کے بارے میں سننے آئے ہیں، اور میں نے صرف اس دنیا کے بھائی چارے کے بارے میں بولا، اور کیا کائنات کے دوسرے حصوں میں بھی بھائی موجود ہیں؟ بھائی ایک ڈاکٹر ہیں الحمدللہ، اور اگر آپ نے میری تقریر سنی ہے اور اگر آپ نے اس پر دھیان دیا ہے، میں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں خدائے برتر کو جو رب ہے دنیاؤں کا، رب العالمین، رب دنیاؤں کا مطلب رب کائنات کا، اس دنیا کے ساتھ
دیکھیے بات کیجئے، اس کائنات کے بھائی چارے پر یا انڈیا کے بھائی چارے پر؟ بھائی
جی ہاں جی ہاں، اگر آپ میرا اس جواب سنیں بھائی صاحب،
میں بھی ایک دو باتیں آپ کے
سامنے، بھائی صاحب میں پہلے ان کو جواب دے دوں، میں پہلے ان کو جواب دوں گا، آپ کا بہت استقبال ہے، میں یہاں ہوں، میں ہر ایک کو جواب دوں گا انشاءاللہ، پہلے میں جواب دوں گا بزرگوار کو، انہوں نے ایک سوال پوچھا، جواب دینا میری خوشی کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ بات کیجئے بھائی چارے پر، وہی بھائی چارہ ہے، اور عالمی بھائی چارے کا مطلب نہ صرف اس دنیا کا بھائی چارہ بلکہ کائنات کی تمام دنیاؤں کا بھائی چارہ، اور قرآن حکیم کے مطابق سورہ شورا میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 29 یہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی جنتیں اور زمین اور ان کے بیچ مخلوق رکھ دی، اس کا مطلب ہے قرآن فرماتا ہے اس دنیا کے علاوہ زندہ مخلوق موجود ہے، اس دنیا کے علاوہ زندہ مخلوق موجود ہے، سائنس اترا آگے تک نہیں پہنچا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس زمین کے علاوہ بھی زندگی ہے، آپ جانتے ہیں سائنس بھیج رہے ہیں راکٹس اور سیارے اور خلائی جہاز جاننے اور ثابت کرنے کے لیے کہ زندگی ہے مارس وغیرہ پر، یہ ثابت نہیں ہوا ہے مگر امکان بہت ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ زندگی ہے اس دنیا کے علاوہ، اور مجھے اس پر یقین ہے، اس لیے بھائی چارے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اس دنیا کا بھائی چارہ، اس کا مطلب ہے بھائی چارہ دوسری دنیاؤں میں بھی، جیسے کہ آپ نے ٹھیک کہا بھائی چارہ ہندوستان میں بھی، بھائی چارہ ہندوستان میں بھی اور ساری دنیا میں، اور اس بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے اگر آپ نے میری تقریر سنی، میں پوری بات دہرانا نہیں چاہتا، کہ ایک اخلاقی نظام ہونا چاہیے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں مارے گا، اسے چوری نہیں کرنی چاہیے، اسے خیرات دینی چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اسے غیبت نہیں کرنی چاہیے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ بھرے پیٹ سوتا ہے کیا اس کا پڑوسی بھی اچھی طرح کھا چکا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شراب تو نہیں پیتا، شراب بھائی چارے کو روکتی ہے اس دنیا میں عام ہونے سے، اسے غیبت نہیں کرنی چاہیے، اسے کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، یہ سب چیزیں بڑھاوا دیتی ہیں عالمی بھائی چارے کو، نہ صرف انڈیا میں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں۔ ممکن ہے کہ آپ نے میری تقریر کے کچھ حصوں پر دھیان نہ دیا ہو، میری تقریر الحمدللہ پوری طرح موضوع پر تھی، اور اس میں سمیٹا انڈیا، امریکہ، ساری دنیا اور اسی طرح ساری کائنات کو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تمام مذاہب اور آپ مان لیں اس تصور کو کہ بنانے والا تمام انسانیت کا، تمام مخلوق کا، چاہے انڈیا میں ہو یا امریکہ میں اور چاہے اس دنیا کے باہر ہو، ایک خدائے برتر ہے، اور سارے مذاہب بنیادی طور پر بولتے ہیں ایک خدا کے ماننے کو، جس پر میں پہلے کافی کچھ بول چکا ہوں، اور زیادہ تفصیل کے لیے خدا کے تصور کے بارے میں میں ایک تقریر کر چکا ہوں، کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز، دوسرے مذاہب کے خدا کے تصور کے بارے میں یہ زیادہ بتاتی ہیں، جیسے سکھزم اور پارسزم وغیرہ، اور یہ خوب وضاحت کرتی ہیں، اگر کوئی اور زیادہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیسے عام ہو سکتا ہے تو آپ لے سکتے میرا کیسٹ کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز، یہ موجود ہے بکری کے لیے باہر آتے میں۔ ہاں بھائی،
ہاں جناب فرمائیے۔ ستیہپال ملانے الہاس نگر، میرے خیال میں ڈاکٹر ذاکر لفظوں سے کھیل رہے ہیں، یہ لفظوں کی شعبے بازی ہے، اسلام تمام دنیا کے لوگوں کو بانٹتا ہے دو حصوں میں، پہلا ہے مومن اور دوسرا کافر، یقیناً ہم نہ مانتے ہیں نہ بھروسہ کرتے ہیں بہت سی چیزوں میں جنہیں اسلام بتاتا ہے، اس لیے یہ عالمی بھائی چارے کا بھائی چارہ ممکن نہیں ہے جسے اسلام ہم پر تھوپنا چاہتا ہے، اسلام صرف پیدا کرتا ہے بانٹنے والی طاقتیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں شیعہ، سنی اور خود اسلام میں دوسری 70 ذاتیں۔ ہاں ہاں، میں سوال پوچھ رہا ہوں، اسلام عالمی بھائی چارہ نہیں دے سکتا، یہ صرف ہندوئزم ہے جو عالمی بھائی چارہ دے سکتا ہے، ایکم ستیہ وپر بہدا ودنتی، ابھی آپ نے حوالہ دیا، اسلام نہیں مانتا گو ہتیا کرنا، کافروں کا قتل، ان کی جائیداد لے لینا، لوٹنا، عورتوں کی حق تلافی کو اسلام کہتا ہے، کیسے بھائی چارہ آ سکتا ہے؟ اور آپ بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، یہ ایک شعبے بازی ہے صرف لفظوں کی، سچ کہہ رہا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں ہندوئزم کی اسلام کے نام پر۔
بھائی نے بہت سے تبصرے کیے اور اسلام کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، واقعی اللہ ان کے ساتھ ہے جو صابر ہیں۔ بھائی چارہ پھیلانے کے لیے تمہیں صابر ہونا چاہیے، اگر میں صبر نہ کروں تو میرے اور میرے بھائی کے بیچ جھگڑا ہو جائے گا۔ اسلام کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، ان اللہ مع الصابرین، واقعی اللہ ان کے ساتھ ہے جو صابر ہیں۔ اور بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے آپ کو صابر ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں موجود اپنے بزرگ بھائی کا احترام کرتا ہوں، ان کا ہندوازم پر ایک اچھا مطالعہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے میں اتفاق نہیں کرتا، میں کہوں گا ان کا مطالعہ اسلام پر تھوڑا کمزور ہے۔ اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسلام میں دو طرح کے لوگ ہیں، پہلا ماننے والا مومن، دوسرا انہوں نے کہا کافر ان کے مطابق۔ ہر مذہب میں دو طرح کے لوگ ہیں، ہندوازم میں بھی ایک ہندو اور ایک غیر ہندو، عیسائیت میں ایک عیسائی اور ایک غیر عیسائی، یہودیزم میں ایک یہودی ایک غیر یہودی، اسلام میں ایک مسلم ایک غیر مسلم۔ تو اسلام کہاں الگ ہے؟ اور میں یہاں ہندوازم پر تنقید کرنے کے لیے نہیں ہوں، تنقید کرنے کے لیے نہیں ہوں، لیکن جبکہ آپ ایک قابل مقرر ہیں میں بولنا چاہوں گا ہندوازم پر، کیونکہ میں تقابلی مطالعہ کا طالب علم ہوں، میں نے وید پڑھے ہیں، میں نے اپنیشد پڑھے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا تبصرہ یہ ہے، ویدوں کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ انسانیت کو پیدا کیا گیا خدا برتر کی چار حصوں سے، سر سے برہمن، سینے سے کشتری، ران سے ویشیہ کاروباری طبقہ، اور پیروں سے شودر یعنی کاسٹ سسٹم۔ میں یہاں اس بھائی پر طنز کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں نہیں چاہوں گا چوٹ پہنچانا اپنے ہندو بھائی کے احساسات کو، اسلام اسے اتفاق نہیں کرتا، میں نے ان چیزوں پر تبصرہ نہیں کیا، میں نے کسی مذہب پر تنقید نہیں کی، کسی مذہب پر تنقید نہیں کی، میں نے نہیں کہا کہ یہ مذہب غلط ہے۔ لیکن آپ اگر آپ جانتے ہیں اپنے ویدوں کو اچھی طرح سے، تو آپ کو آڈینس کو بتانا چاہیے، کیا وید نہیں کہتے کہ سر سے تم کو برہمن ملے، سینے سے تم کو کشتری ملے، ران سے تمہیں ویشیہ ملے، کاروباری طبقہ، بہادر طبقہ، قابل طبقہ، کاروباری طبقہ، شودرا، شودرا یعنی گرے ہوئے نیچے لو، اور کتابیں موجود ہیں ڈاکٹر امبیڈکر کی لکھی ہوئی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بھائی ہندوازم میں نے بہت اچھی طرح پڑھا ہے، میں ہندوازم کی بہت سی باتوں کی عزت کرتا ہوں، کچھ باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا، آپ نے مجھے کہنے کے لیے مجبور کیا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ انعام میں سورہ 6 آیت 108، اور برا مت کہو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ کہا وہ اچھا پہلو ہے ہندوازم کا، وہ یہ ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں ایک خدا کے تصور میں۔ آپ کے سوال کے بارے میں، جو آپ جانتے ہیں مسلمان لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، وہ گایوں کو مارتے رہتے ہیں، صحیح آپ نے کہا نا۔ دیکھیے ہر الزام ایک جواب چاہتا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، میں کچھ پر بولوں گا اور دوسروں کے لیے دوبارہ آئیں پوچھیں، میں یہاں ہوں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، اگر میں یہ غلط فہمیاں دور کروں تو لوگ اسلام کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ اس لیے ہمارے اجلاس میں ہمیشہ سوال جواب کا ایک دور ہوتا ہے، اور ہم استقبال کرتے ہیں، اور کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ جتنا زیادہ ایک شخص تنقید کرے گا اتنا زیادہ دلیل کو سمجھے گا، وہ اسلام کو اچھی طرح سمجھے گا، یہی ہے جو میں کرتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ سچ کے پیغام کو پھیلاؤ حکمت کے ساتھ۔ قرآن فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن، جو کہتی ہے اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ کیا ہم نان ویج کھا سکتے ہیں؟ گائے وغیرہ کو مارا جا سکتا ہے؟ بہت سے غیر مسلم جو کہتے ہیں تم جانتے ہو تم مسلمان، تم سب ظالم لوگ ہو، تم سب جانوروں کو مارتے ہو۔ آپ کی اطلاع کے لیے بھائی، ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے صرف سبزی خور ہو کر بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گوشت خوری کرے ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے۔ لیکن جیسا کہ قرآن فرماتا ہے بہت سی جگہوں پر، تم چوپائے کھا سکتے ہو، ہمیں کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ قرآن فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1، یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 کہ اللہ نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ قرآن سے دوہراتا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21، تم مویشیوں کا گوشت کھا سکتے ہو۔ آپ جانتے ہیں گوشت میں، ڈاکٹرز یہ موجود ہیں، میں بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، یہ پروٹین سے بھرپور ہے، یہ آئن سے بھرپور ہے، اس میں بہت غذائیت ہے، دوسری غذاؤں میں پروٹین کی جو مقدار آپ गोश्त में पाते हैं नहीं पा सकते किसी दूसरे वेजिटेरियन खाने में। सोयाबीन, जिसे सब्जियों में प्रोटीन की सबसे बेहतरीन किस्म माना जाता है, ये गोश्त के प्रोटीन के आसपास भी नहीं आती। और गायों के कत्ल के तस्वुर के बारे में, अगर आप हिंदू सहीफे पढ़ें, मैं किसी मजहब पर तनकीद करने के लिए यहां नहीं हूं, भाई ने एक सवाल पूछा, मुझे सच बोलना होगा। ये इजाजत देता है गोश्त खाने की। अगर आप हिंदू सहीफे पढ़ें, साधु संत वो खाते थे गोश्त, बड़े का गोश्त भी। ये तो बाद में दूसरे मजहबों के असर की वजह से, जैसे जैनिज्म वगैरह, वो लोग असर में आ गए इस अहिंसा के फलसफे के, या जानवरों को ना मारने के, कि उन्होंने ये फलसफा कबूल कर लिया जिंदगी के तौर तरीके में। वरना इस्लाम जानवरों के हुकूक के लिए भी है। मैं एक तकरीर कर सकता हूं सिर्फ जानवरों के हुकूक पर। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कहता है कि जानवर पर ज्यादा बोझ मत डालो, उनसे अच्छा बर्ताव करो, उन्हें खाना दो, लेकिन जब जरूरत हो वो खाने के लिए भी बनाए गए हैं। अगर आप तजिया करें दूसरे मजाहिब का जो इस फलसफे को मानते हैं कि आपको गोश्त नहीं खाना चाहिए, यह फलसफा इस तसव्वुर की बुनियाद पर था कि आपको जानवरों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो जिंदा मखलूक है, इसलिए गोश्त खाना एक गुनाह है, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं। अगर कोई इंसान इस दुनिया में रह सकता है बगैर मारे हुए एक जिंदा मखलूक को, तो मैं सबसे पहला होऊंगा। आलमी भाईचारा हिंदुइज्म में यह है कि हर जिंदा मखलूक तुम्हारा भाई है, हर जिंदा मखलूक बगैर लिहाज किए, चाहे वो जानवर हो या चिड़िया हो या कीड़ा। मैं एक आसान सा सवाल पूछ रहा हूं, एक इंसान 5 मिनट के लिए भी कैसे जिंदा रह सकता है बगैर मारे हुए अपने लाखों भाइयों को? जो मेडिकल साइंस जानते हैं वो समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं, कि जब तुम सांस लेते हो लाखों जरासीम तुम अंदर ले रहे हो और तुम मार रहे हो, इसका मतलब है इस मजहब में तुम जिंदा रहने के लिए अपने भाइयों को मार रहे हो। इस्लाम में आलमी भाईचारा यह है कि हर इंसान तुम्हारा भाई है। अकीदे का भाईचारा यह है कि हर मुस्लिम तुम्हारा भाई है, हर जिंदा मखलूक मेरा भाई नहीं है, लेकिन हमें जिंदा मखलूक की हिफाजत करनी है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बेवजह उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब जरूरत हो तुम उन्हें खाने के लिए ले सकते हो। इसलिए जब यह फलसफा कहता है कि गोश्त खाना एक गुनाह है क्योंकि तुम जिंदा मखलूक को मारते हो, आज साइंस हमें बताती है कि पौधे भी जिंदगी रखते हैं, क्या आप जानते हैं? इसलिए यह दलील कि जिंदा मखलूक को मारना गुनाह है फेल हो जाती है। इसलिए अब वो दलील बदलते हैं और कहते हैं कि देखो पौधे जिंदगी रखते हैं मगर पौधे दर्द महसूस नहीं कर सकते, इसलिए जानवरों का कत्ल करना ज्यादा बड़ा गुनाह है पौधों के कत्ल के मुकाबले में। आपको मालूम है आज साइंस तरक्की पर है और हम जान चुके हैं पौधे भी दर्द महसूस कर सकते हैं, पौधे रो भी सकते हैं, पौधे खुशी भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए यह दलील कि वो दर्द महसूस नहीं कर सकते नाकाम है। क्या चीज है पौधों के रोने को इंसानी कान नहीं सुन सकते? क्योंकि इंसानी कानों के पास फी सेकेंड 20 साइकिल से 20,000 साइकिल तक फ्रीक्वेंसी की तादाद होती है, इसके बीच कुछ भी इंसानी कान सुन सकते हैं, इससे कम या ज्यादा इंसानी कान नहीं सुन सकते। मिसाल के तौर पर मालिक कुत्ते की सीटी बजाता है, आप जानते कुत्ते की सीटियां होती हैं, जिसे कुत्ते की खामोश सीटी कहा जाता है, ये सीटी बजती है जिसमें फ्रीक्वेंसी की तादाद 20,000 साइकिल से ज्यादा और 40,000 साइकिल से कम होती है एक सेकेंड में। कुत्ते फी सेकेंड 40,000 साइकिल तक सुन सकते हैं, इसलिए जब मालिक सीटी बजाता है तो कुत्ते सीटी सुनते हैं मगर इंसान नहीं सुनते, इसे कुत्तों की खामोश सीटी कहा जाता है। इस तरह पौधों की रोने की आवाज इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन वो भी रोते हैं, वो भी दर्द महसूस करते हैं। हमारे एक भाई थे जिन्होंने सबसे ज्यादा बहस की और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जाकिर, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि पौधे जिंदगी रखते हैं और दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं पौधों के पास 2 हिस्से कम हैं, उनके पास सिर्फ 3 हिस्से होती हैं, जानवरों के पास 5 हिस्से होती हैं, इसलिए जानवरों को मारना ज्यादा बड़ा गुनाह है बमुकाबले पौधों के। इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई फर्ज कीजिए आपका एक छोटा भाई है जो बहरा और गूंगा पैदा हुआ है, 2 हिस्से कम है, जब वो बड़ा होता है अगर उसे कोई कत्ल कर देता है तो क्या आप जज से कहेंगे क्या मेरे हाकिम कातिल को कम सजा दीजिए क्योंकि मेरे भाई की 2 हिस्से कम थी? क्या आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे मेरे हाकिम इसे दुगनी सजा दीजिए क्योंकि इसने ऐसे शख्स को मारा जो मासूम था। तो इस्लाम में दलील इस तरह काम नहीं करती, 2 हिस्से या 3 हिस्से। इस्लाम फरमाता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168, अच्छी चीजों को खाओ जो हमने तुम्हारे लिए मुहैया की, मतलब जो अच्छा और जिसकी इजाजत है आप खा सकते हैं। और ये सबब है अगर आप तज्जिया करें मवेशी दुनिया में। अल्लाह सुबहान तआला का अपना एक तरीका है, खुदाए बरतर का, चौपायों की पैदावार बहुत तेज है दूसरे जानवरों और इंसानों के मुकाबले में, वो बहुत तेजी से पैदा होते हैं। अगर मैं आपसे इत्तेफाक कर लूं कि किसी इंसान को नहीं खाना चाहिए कोई चौपाया, तो हमारे पास दुनिया में चौपायों की आबादी हद से बढ़ जाएगी। और गाय को मारने के बारे में एक किताब है जो लिखी है मौलाना अब्दुल करीम पारिक ने, गौ हत्या, गाय का ज़िबा करना, जिम्मेदार कौन? अगर आप तज्जिया करें, लोग जो चमड़े का कारोबार करते हैं, गाय का चमड़ा वो गैर मुस्लिम ज्यादा है मुसलमानों से, चमड़ा जैन वो इसका कारोबार करते हैं, इसलिए जो लोग फायदा उठा रहे हैं गाय के ज़िबा होने से वो मुसलमान नहीं, उनमें ज्यादातर गैर मुस्लिम है। तो अगर आप तवारीख से अच्छी तरह वाकिफ हैं और दलील को भी अच्छी तरह समझते हैं तो आप समझ जाएंगे, अल्लाह फरमाता है अच्छी चीजों को खाओ जो हमने तुम्हारे लिए मुहैया की, अगर तुम खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा अगर आप तज़िया करें चरने वाले जानवरों के दांतों की तरतीब का, गाय बकरी भेड़ ये सिर्फ सब्जा खाते हैं, उनके दांतों की तरतीब सपाट है, अगर आपने तज़िया किया है गोश्त खोर जानवरों के दांतों की तरतीब का, शेर बब्बर शेर चीता इनके दांत तेज नोकदार होते हैं, ये सिर्फ गोश्त खा सकते हैं। अगर आप इंसान के दांतों की तरतीब का तज़िया करें, अगर आप आईने के सामने जाएं और वहां देखें हमारे दांत नोकदार हैं और सपाट भी हैं, अगर खुदा बरतर चाहता कि हम सिर्फ सब्जियां खाएं तो उसने हमें ये नोकदार दांत क्यों दिए, किस लिए? गोश्त खाने के लिए। अगर आप चरने वाले जानवरों के हाजमे के निजाम का तज़िया करें, गाय बकरी भेड़ उनके हाजमे का निजाम सिर्फ सब्जियां हजम कर सकता है, गोश्तखोर जानवरों के हाजमे का निजाम शेर बब्बर शेर चीता सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है, इंसानों के हाजमे का निजाम दोनों को हजम कर सकता है सब्जी और गोश्त। अगर खुदाए बरतर चाहता कि हम सिर्फ सब्जियां खाएं तो उसने हमें हाजमे का ऐसा निजाम क्यों दिया जो सब्जी और गोश्त दोनों को हजम कर सकता है? इसलिए साइंस के मुताबिक अगर आप तज़िया करें, खुदाए बरतर चाहता है कि हम सब्जी और गोश्त दोनों खाएं। उम्मीद है कि जवाब हुआ, और आपका कोई सवाल है कोई दूसरी गलतफहमी है भाई तो जवाब देना मेरे लिए खुशी की बात होगी, एक वक्त में एक गलतफहमी जिससे कि मैं हर गलतफहमी के साथ इंसाफ कर सकूं। शुक्रिया भाई।
हाँ जनाब।
हेलो डॉक्टर नाइक साहब, यहां पर जितनी भी बातें हुई हैं ज्यादातर इंग्लिश में हुई हैं, और यहां पर इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि वो अब सिर्फ इंग्लिश समझ सकें, ज्यादातर तो जो भी आपके लेक्चर या भाषण होने चाहिए थे ना,
माफ कीजिए,
यहाँ पर लोगों की भाषा में होने चाहिए।
भाई माफ कीजिए, मुझे बताने दीजिए, हमें यहाँ बुलाया गया है, जाकिर को मुंतजबी ने यहाँ बुलाया है इंग्लिश में बात करने के लिए और सवाल जवाब के लिए। ये सवाल जो आपको बताने हैं मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा मेहरबानी करके प्रोग्राम के बाद मुंतजबीन को बताएं।
सवाल मेरा बाकी है।
हाँ तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं ना, उर्दू में भी अगर आप सवाल पेश करेंगे इंशाल्लाह अगर मुकर्रर को वो इसकी वजाहत करेंगे और जवाब देंगे।
नहीं बुरा है वेद और शास्त्र और ना ही कुरान बुरा है, बिना समझी बातें और बेसमझा व्याख्यान बुरा है, समझो तुम अपनी बातें और सबका ध्यान बुरा है, अपने अपने हिसाब से सोचो कि उस प्रभु का सम्मान नहीं बुरा है, और आलमी भाईचारे के पहले से जहां भी कोई बातें होनी चाहिए वहां पर मजहब की कोई बात नहीं होनी चाहिए, मजहब से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए, क्योंकि मजहब से ऊपर उठना ही उस अल्लाह ताला को पाना है, उस परमात्मा को पाना है, और पहले गॉड का मतलब समझो कि गॉड का मतलब क्या है, गॉड गॉडेस कुछ नहीं होता, जी ओ डी वो बड़ी ताकत चला रही है हमारी उस कुदरत कायनात को, उस कुदरत के तीन हिस्से हैं, जी ओ डी गॉड, जी का मतलब जनरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर, डी का मतलब डिस्ट्रॉयर, ये कुदरत हमें पैदा कर रही है, कुदरत हमें चला रही है, कुदरत हमें मिटा रही है, हमें पैदा किया जा रहा है, हमें चलाया जा रहा है, हमें मिटाया जा रहा है, इसमें गॉडेस और गॉड का कुछ भी मतलब नहीं है, और गॉड का असली मतलब कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला गॉड से ऊपर है, परमेश्वर गॉड से ऊपर है, परवरदिगार गॉड से ऊपर है।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
शुक्रिया
भाई ने मेरी तकरीर का बहुत मुख्तसर अंदाज में खुलासा किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने सही कहा कि कोई देवी देवता नहीं है, मैंने इसी की तशरीह की, उन्होंने हिंदी में समझाया क्योंकि जो इंग्लिश नहीं समझ सकते वो समझ सकें, भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया, कोई देवता नहीं कोई देवी नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह सुभान व तआला बड़ा है, और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं भाई शुक्रिया, और उन्होंने ठीक कहा नहीं होने चाहिए वो मुख्तलिफ मजाहिब, और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं नहीं होने चाहिए मुख्तलिफ मजाहिब, क्योंकि कुरान फरमाता है सूरह आले इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिंदगी का एक ही तरीका मंजूरी के लायक है कि इंसान जो अपनी ख्वाहिशें हवाले कर देता है अल्लाह सुभान व तआला के, और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि अगर आप मजहब के अंदर आपस में ही लड़ेंगे तो इख्तलाफात होना यकीनी है, और इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। और भाई ने कुछ तफसीरें और भी किए जैसे शिया वगैरह और मुख्तलिफ मजाहिब और 73 फिरके हैं, मैं जवाब दे सकता हूं मगर उसके लिए वक्त चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं जवाब तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब ही दूंगा क्यों मुख्तलिफ फिरकों वगैरह के बारे में, लेकिन भाई ने सही कहा मजहब एक होना चाहिए, जिंदगी का एक तरीका, और वो है अपनी मर्जी अल्लाह सुबहानहू ताला को सौंप देना। अगर आप इसमें यकीन रखते तो भाईचारा जरूर होगा, और अगर यकीन नहीं रखते तो इख्तलाफात यकीनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अब हम क्या शुरू करेंगे कि हम एक एक सवाल स्लिप पर पूछना शुरू करेंगे, और अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो माइक पर तशरीफ लाए, इस तरह आप अपने सवाल पेश कर सकते हैं। खैर, हम वहां मौजूद मोहतरम को सवाल पूछने का मौका देते हैं। कोई बहन को सवाल पूछना चाहे तो बराए मेहरबानी माइक पर तशरीफ लाएं। अगर वक्त पर कोई खड़ा नहीं होता तो मैं समझूंगा कि अब माइक से कोई सवाल नहीं आएगा और मैं घड़ी के तरतीब से सवाल पूछने की तरफ बढ़ जाऊंगा। एक सवाल माइक पर, एक स्लिप पर। जी भाई।
जाकिर भाई, मेरा सवाल बहुत आसान है।
आपका नाम?
प्रोफेसर देवड़े। मैंने किसी मजहब को नहीं पढ़ा है, मैं मजहब में यकीन नहीं रखता, और मेरा आसान सवाल यह है कि क्या आप अलग अलग मजाहिब के वजूद मानते हैं, और क्या अलग अलग मजाहिब जरूरी हैं? क्योंकि आपने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह खुदाए बरतर ने दुनिया के तमाम लोगों को पैदा किया, मर्दों और औरतों को, और उसने मकसद के तहत बांट दिया मुख्तलिफ मजाहिब में, मुख्तलिफ इलाकों में वगैरह वगैरह, इसलिए कि उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए लेकिन एक दूसरे को समझना चाहिए। क्या आप मेहरबानी करके मुझे सलीबी जंग की वजाहत करेंगे, और मेहरबानी करके क्या आप मुझे अपने बयान की वजाहत करेंगे कि हिंदुइज्म और मजहब इस्लाम के बीच का फर्क? आपने कहा कि यह हिंदुइज्म है और यह मजहब इस्लाम है। आपने कभी नहीं कहा कि हिंदुइज्म एक मजहब है। आपने जो फर्क बताया हिंदुइज्म और मजहब इस्लाम के बीच, वो था कि हिंदू हर चीज को खुदा मानते हैं और मुस्लिम हर चीज को खुदा की मानते हैं। अगर हर चीज खुदा की है तो फिर इतने कत्ल क्यों होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या सारी दुनिया के किसी हिस्से में हो, और मुस्लिम मुमालिक में भी? बहुत बहुत शुक्रिया।
भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इन्होंने कहा कि मैंने अपनी तकरीर में कहा खुदाए बरतर ने एक जोड़े से तमाम इंसानों को पैदा किया, मर्द और औरत के, और मुख्तलिफ मजाहिब में बांट दिया। भाई मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि खुदाए बरतर ने लोगों को मुख्तलिफ मजाहिब में बांट दिया। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैंने कभी मुख्तलिफ मजाहिब नहीं कहा। मैंने कहा मुख्तलिफ मुल्कों में और कबीलों, नस्लों और रंगों में, ना कि मजाहिब में। अल्लाह फरमाता है मजहब सिर्फ एक है। खुदाए बरतर लोगों को मुख्तलिफ मजाहिब में कभी नहीं बांटता, मजहब सिर्फ एक है। मुख्तलिफ मुल्कों में और रंगों और जुबानों के फर्क में, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको कि ठीक है ये शख्स फला नस्ल से, इलाके से आया है, मजहब से नहीं, इलाका, ये मजहब नहीं है। इसलिए आपकी मजहब वाली बात ठीक नहीं, बाकी बातें ठीक है। मुख्तलिफ जुबानें, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ ममालिक, मैं इसे इत्तेफाक करता हूं, ताकि वो एक दूसरे को पहचान सकें, ना कि ये कि आपस में लड़ें। आपने कहा कि मैंने कभी जिक्र नहीं किया कि हिंदुइज्म एक मजहब है। मैं दोबारा आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मैंने कहा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मजहब का मतलब है खुदा में यकीन रखना। हिंदुइज्म को समझने के लिए, हिंदुइज्म के मजहब को समझने के लिए आपको खुदा के तसव्वुर को समझना होगा। यहूदिज्म के मजहब को समझने के लिए आपको यहूदिज्म में खुदा के तसव्वुर को समझना होगा। ईसाइत के मजहब को समझने के लिए आपको ईसाइत में खुदा के तसव्वुर को समझना होगा। इस्लाम के मजहब को समझने के लिए आपको इस्लाम में खुदा के तसव्वुर को समझना होगा। यही मैंने कहा। जहां तक इख्तलाफात की बात, किसने पैदा की? खुदा बरतर ने नहीं। अल्लाह साफ तौर पर सूरह अनाम में फरमाता, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 169, जो कोई मजहब को फिरकों में बांटेगा अल्लाह को उससे कुछ लेना देना नहीं। आप मजहब को नहीं बांट सकते, जो कोई बांटता है गलती पर है। आपने मुझसे पूछा लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, ये आपको उनसे पूछना है। मसलन उस्ताद की हैसियत से आप शागिर्दों से कहते हैं नकल मत करो, और फिर भी वो नकल करते हैं, तो कौन जिम्मेदार है? उस्ताद या शागिर्द? शागिर्द। यहां खुदाए बरतर ने इंसान को इख्तियार दिया है कि तुम जो चाहे कर सकते हो, मैंने तुम्हारी रहनुमाई की है। आखिरी और फैसला कौन रहनुमाई, आखिरी और फैसला कौन? वही कुरान करीम है। इस पर जिक्र करो या मत करो। और अल्लाह फरमाता है, मैंने तकरीर में जिक्र किया सूरह मैदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32, अगर कोई किसी इंसान का कत्ल कर डाले, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू, यहूदी, ईसाई, सिख, कोई भी, बगैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो, गोया उसने तमाम लोगों का कत्ल कर दिया। अगर किसी की जान बचा ले तो उसने गोया तमाम लोगों को बचा लिया। तो खुदाए बरतर पसंद नहीं फरमाता लोग एक दूसरे को कत्ल करें। लेकिन अगर इंसान अमल नहीं करना चाहता तो कौन जिम्मेदार? इंसान। इसलिए ये दुनिया, कुरान फरमाता है सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 कि ये दुनिया अल्लाह ने पैदा की है, मौत और जिंदगी आजमाने के लिए कि तुम में से आमाल में कौन अच्छा है। और अल्लाह ने जिंदगी और मौत पैदा की आजमाने के लिए आमाल में कौन अच्छा है। अल्लाह दखल नहीं देना चाहता, अगर वो चाहे दे सकता है। कुरान फरमाता है अगर अल्लाह चाहता सबको ईमान वाला बना देता, लेकिन तब आजमाइश कहां होती? अगर उस्ताद चाहे तो आसानी से सारे तलबा को पास कर सकता, चाहे वो फेल ही क्यों ना हो, उस्ताद कर सकता है, मगर ये गलत होगा। तब तलबा को इख्तियार कहां रहा? अगर वो इम्तिहान से गुजर रहे हैं और कोई सही जवाब नहीं देता है, इसके बावजूद उस्ताद पास करता है, तो वो शख्स जिसने मेहनत की एतराज करेगा कि मैंने इम्तिहान के लिए अंधाधुन मेहनत की, ये इंसान नकल कर रहा है और धोखा दे रहा है, ये गलत जवाब लिखता और पास हो जाता है। तब अगले बैच में अगर लोग जान ले कि टीचर हर एक को पास करता है बिला इम्तियाज ये कि वो सही जवाब देता है गलत, तो हर कोई पढ़ाई करना छोड़ देगा। तब आप एक डिग्री पा सकते हैं, मेडिकल की डिग्री। लेकिन डॉक्टर जब मेडिकल में पास हो जाता है, जब वो बाहर आता है तो लोगों को अच्छा नहीं करेगा, वो लोगों को मारेगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान करीम में हिदायत की है, कत्ल मत करो, नुकसान मत पहुंचाओ, लोगों और पड़ोसियों से मोहब्बत करो, वो सब जो मैंने अपनी तकरीर में कहा। अगर लोग ऐसा नहीं करते, इसका मतलब वो कुरान को नहीं मानते, चाहे ये कोई भी हो, चाहे ये कोई भी हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो। लोग कह सकते हैं अपने आप को सिर्फ एक मुस्लिम नाम से पुकार कर, अब्दुल्ला या जाकिर या मोहम्मद, आपको जन्नत का टिकट नहीं मिल जाता। अपने आप को मुस्लिम कह देने से आप मुस्लिम नहीं हो जाते। मुस्लिम एक लेबल नहीं है। ये ठीक है अगर मैं कहता हूं कि एक मुस्लिम हूं, मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपनी मर्जी अल्लाह सुब्हान व तआला को सौंप देता है। एक शख्स को सिर्फ पुकारने से जाकिर, अब्दुल्ला, मोहम्मद, शाकिर, ये लोग अगर अमल करते हैं, अपनी मर्जी अल्लाह को सौंपते हैं, तो ये मुस्लिम है। अपने आप को मुस्लिम कहने वाले, जैसा कि कुरान फरमाता है, कुछ लोग हैं जो सिर्फ जुबानी मुस्लिम है। इसलिए अगर लोग कत्ल कर रहे हैं तो वो कुरान की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे। अगर वो कुरान की हिदायत पर अमल करते हैं तो सारी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। उम्मीद है इस सवाल का जवाब हुआ।
तो जाकिर भाई, अगर एक हिंदू कुरान के उसूलों को मानता है, जो बहुत मिलते जुलते हैं बहुत से हिंदू किताबों में दिए गए तमाम उसूलों से, तो क्या एक हिंदू अपने आप को मुसलमान कह सकता है? या फिर दूसरी तरफ, क्या एक मुसलमान खुद को हिंदू कह सकता है? क्योंकि आपकी तकरीर का सही मौजू आलमी भाईचारा है, मैंने अच्छी तरह समझा है डॉक्टर व्यास को जब उन्होंने अपना सवाल पूछा।
बहुत अच्छा सवाल। अगर आप एक वाजे सवाल पूछते हैं तो मैं जवाब दे सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। कुरान में दिए गए उसूलों और हिंदुज्म पर अमल करने वाले एक हिंदू को क्या मुस्लिम कहा जा सकता है, और क्या मुस्लिम को एक हिंदू कहा जा सकता है? बहुत अच्छे। आइए हम तारीफ समझते हैं लफ्ज मुस्लिम और एक हिंदू की। जैसा मैंने कहा, मुस्लिम वो शख्स है जो अपनी मर्जी हवाले कर देता है अल्लाह सुब्हानहु तआला के, खुदा बरतर के। हिंदू लफ्ज की क्या तारीफ है, क्या आप जानते? हिंदू जियोग्राफियाई तारीफ है। कोई भी जो इंडिया में रहता है, इंडस वादी की तहजीब के इस हिस्से में रहने वाला कोई भी एक हिंदू है। तारीफ के हिसाब से मैं हिंदू हूं, क्या आप जानते हैं? हिंदू जियोग्राफियाई तारीफ है। आप किसी से पूछिए, स्वामी विवेकानंद के मुताबिक हिंदू एक गलत दिया हुआ नाम है। जियोग्राफियाई तौर पर मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक हिंदू हूं जियोग्राफियाई तौर पर, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उन्हें वेदांतिस्ट कहा जाना चाहिए, उन्हें हिंदू नहीं कहा जाना चाहिए, वेदांतिस्ट। अगर आप मुझसे पूछें क्यों मैं जियोग्राफिकली हिंदू हूं, हाँ मैं जियोग्राफिकली हिंदू हूं, मैं हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं वेदांतिस्ट हूं, वेदास पर अमल करता हूं, मैंने कहा कि वेदास के वो हिस्से जो मिलते हैं कुरान हकीम से, मुझे उन पर अमल करने में कोई एतराज नहीं है। मसलन कि खुदा एक है। अगर आप कहें मैं उस खुदा बरतर में यकीन रखता हूं जिसने ब्राह्मणों को सिर से पैदा किया, एक अलग जात जो बड़ी जात है, क्षत्रियों को सीने से, ये वेद है, मैं हवाला दे रहा हूं। अगर आप वेदों को नहीं मानते तो ये आपकी उलझन है भाई, लेकिन ये वेद है मैं जिसका हवाला दे रहा हूं। आप वेदों के आलिम से पूछ सकते हैं, वो यहां बैठे हुए हैं, वो यहां बैठे हुए, ये वेदास कहते हैं, मैं नहीं। वैश्यों को रानों से और शूद्रों को पैरों से, मैं इस तसव्वुर से इत्तेफाक नहीं करता।
तो फिर आप किस तसव्वुर से इत्तेफाक रखते हैं?
मुझसे पूछे कि आप वेद के इस फलसफे में यकीन रखते हैं, मैं कहूंगा नहीं। इस मखसूस फलसफे पर
आपके हिसाब से जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, आपके हिसाब से?
जी, जियोग्राफिकली मैंने कहा।
ये हकीकी भाईचारा है।
हाँ,
भाई ने ठीक बात कर रहे हैं।
हम कोई भी जो इंडिया में रहता है
इसके बारे में बोलिए,
उसे हिंदू होना ही है कुदरतन। कोई भी अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी शहरी है, उसे अमेरिकन होना ही है।